शांति। हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी शकु दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो पहली टीचर्स ट्रेनिंग चली उसमें आपने भाग लिया और ट्रेनिंग लेकर 4-5 वर्षों तक आप देहरादून, मंसूरी, पुणे, गुजरात आदि अलग अलग स्थानों पर रहकर आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी और वापस 18-19 वर्ष की आयु में मुंबई पहुंच गए। घाटकोपर कनेक्शन में जो डोंबिवली है वहां सेवा केंद्र संभालना आरंभ किया। तो पिछले 47 वर्षों से आप डोंबिवली सेवा केंद्र संभालते आए हैं और संभाल रहे हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से घाटकोपर के द्वारा निर्मित योग भवन वहां पर रहकर आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप विशेष करके युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं और जैसे कि आपने टीचर्स ट्रेनिंग ली है तो आप टीचरों के भी टीचर हैं और मीडिया में भी बहुत अच्छी सेवा करती हैं आप। रेडियो, एफएम रेडियो, टीवी चैनल्स आदि पर आपके इंटरव्यूज आते हैं और भी स्टोरीज के द्वारा मूल्यों को सिखाने की भी सीरीज आपकी पीस ऑफ माइंड चैनल पर आती रही। तो बहुत ही प्रतिभावान हस्ती है। कई सारे अवार्ड्स आपने प्राप्त किए हैं, जैसे कि यूथ लीडरशिप अवार्ड, विमेन एक्सीलेंस अवार्ड, नारी शक्ति गौरव अवार्ड। तो बहुत ही पुरस्कारों से सम्मानित प्रतिभावान हस्ती आदरणीय शकु दीदी जी आज हमारे बीच में मन, वचन और कर्म की पवित्रता क्या होती है इस पर प्रकाश डालेंगे। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स इंदिरा बहन, बहुत सी प्रशंसा आपने कर ली, लेकिन इस महिमा के योग्य बनाने वाला कौन? हम तो कुछ नहीं थे, तो इसीलिए बाबा ने ऐसा बनाया और अभी भी बना रहे हैं, अंतिम घड़ी तक बनते रहेंगे जब तक कि बाप समान न बन जाए। जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें हमें खत्म करके बाप समान बनना है, इसलिए अंतिम घड़ी तक सीखना है। मुंबई में जैसे दादियां बाबा के पास रही, उसमें एक क्वीन मदर थी, क्वीन मदर जो मनमोहिनी दीदी, साकार बाबा के बाद प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी, हम कहते थे दीदी दादी का जोड़ा। किसने देखा मनमोहिनी दीदी को आप लोगों में से? ओ, खाली 2-4 हैं। तो मनमोहिनी दीदी और उनकी लौकिक बहन दूसरी दादी जिनका नाम था शील दादी, शील दादी को किस किस ने देखा? हाथ ऊपर करो। कोई भी नहीं है। अच्छा, उन दोनों की माँ उनको नाम दिया था क्वीन मदर। जैसी जैसा नाम था वैसी क्वीन दिखती थी, बहुत सुंदर, रानी की तरह। तो वो हमेशा 3 शब्द सिखाती थी। इंदिरा बेन मेहमा कर रहे थे इसलिए मुझे ये पॉइंट याद आई, तो मैंने कहा ना सीखना है, तो वो हमेशा, तब मैं तो बहुत ही छोटी थी, तो मुझे कहती थी मिचनू, छोटे को मिचनू बोलते हैं ना, तो मुझे वो क्वीन मदर मिचनू कहती थी। तो उसने तीन शब्द उन्होंने सिखाए, कौन से तीन शब्द, अगर आप लोग भी नोट करके रखोगे और वो जीवन में नोट हो जाएगा ना, कभी भी दुखी नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो तीन शब्द हैं, सीखो सीखो सीखो, झुको झुको झुको, मरो मरो मरो। ये तीन शब्द उन्होंने हमको सिखाए। हर बात में मुझे सीखना है, कोई सीखे न सीखे मैं उस चक्कर में नहीं जाएगी, मुझे सीखना है हर बात में, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान से, हर समय मुझे झुकना है। बाबा कहते हैं जो झुकता वो महान बनता, पेड़ में फल आता वो झुकता है। तो झुकना हार की निशानी नहीं है, नम्रता की निशानी है, एडजस्ट हो जाती है, हमारी दो की अनबन है, ओके मैं झुक गई, तो मुझे झुकना है। और तीसरा पावरफुल शब्द है मरो मरो मरो, हर बात में मुझे मरना है, कोई मरे कि न मरे मुझे मरना है। तो जब ये जीवन में आ जाता है तो कोई भी समस्या मेरे आगे टिकी नहीं सकती है, प्रॉब्लम तब कब पैदा होते सामने, इन बातों के कारण ही तो होते ना, ये धारणाओं की कमी के कारण होते। जैसे अभी अभी आप सभी ने क्लास किया बहुत सुंदर गीता बहन के द्वारा, कौन सा विषय था आप लोगों का, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार। मम्मा का मास चल रहा है, कल तक है, लकी हैं आप लोग कि इस मास में आपको भट्टी मिली है, मम्मा से वरदान प्राप्त करते ही होंगे आप। नंबर वन आज्ञाकारी मम्मा रही, कैसे, बाबा ने कहा और किया, बाबा के कहने के बाद इतना सा एक सेकंड का भी कोई संकल्प नहीं, क्यों क्या कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, बाबा ने बोला है करना है, होना ही है। नंबर वन आज्ञाकारी बने, नंबर वन वफादार फरमान बरदार। तो संपन्न बनने में भी मम्मा ने नंबर वन ले लिया, कितनी अच्छी बात है, कितनी छोटी आयु और मम्मा नंबर वन हो गई, सोचो आप। आज हम कितने वर्षों से बाबा के बच्चे बन के चल रहे हैं, हम खुद को भी देखें तो लगता है अब तक हम कितने पीछे हैं, कितना तीव्र पुरुषार्थ मम्मा ने अपने जीवन में किया, अति तीव्र। कहते हैं ना बाबा और मम्मा ने एक भी रात 2 बजे के बाद सोए नहीं, और मम्मा की इतनी बीमारी, और उन दिनों में कैंसर की कोई दवाई नहीं निकली थी, लेकिन अंतिम घड़ी तक उनको अंदर जो दर्द होता होगा चेहरे पर, बिल्कुल किसी को दिखाई नहीं दिया, न चेहरे पर, न बोल में, न व्यवहार में। ऐसा मम्मा का पावरफुल योग, धारणा, निश्चय, बाबा से प्यार, हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना, जितनी महिमा करें उतनी कम। तभी आपके पास आज और कल का दिन भी है इस मास का। आपका भट्टी कब तक है? कल तक है, परसों तक, परसों जाने वाले जी, 2 तारीख को। तो इसीलिए अच्छी तरह से अभी भी आप वरदानी मुहूर्त बन सकते हो बाबा और मम्मा से वरदान लेके, क्योंकि ये जून मास में स्पेशल मम्मा का वतन में बाबा के साथ चक्कर लगाना रहता ही है। तो ये भी बहुत ड्रामा अच्छा बन गया। अभी हम आते हैं आज के अपने विषय पर, जो हमको दिया गया कि मन वचन कर्म की पवित्रता। बाबा को कहते हैं पतित पावन। बाबा कहते हैं ना, मेरा टाइटल, मेरी महिमा, मेरी विशेषता है पतितों को पावन बनाना। मैं आता ही इसके लिए हूं, क्योंकि जब हम आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती हैं, चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, कभी भी, तो बाबा कहते पहली स्टेज आत्मा की वो पवित्र होती है, चाहे वो कभी भी उतरे, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वरूप पवित्रता है। फिर चक्कर लगाने के बाद जब हम अंत में अभी अपने घर वापिस जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पवित्र बन के जाएंगे। इतना भी हमारा दाग जब आत्मा में नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी, फिर ही हम जा सकते, एंट्री हमको तभी मिलेगी। फिर चाहे हम बाबा के बच्चे योग बल से विकर्म विनाश करें, चाहे जो विकर्म रहे हुए हैं उनकी धर्मराज के द्वारा सजाएं मिले, वो हमारी पुरुषार्थ पर डिपेंड है। लेकिन घर जाने के पहले हमें पवित्र बनना होगा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि ऐसी सजा भोगते हैं जैसे बहुत जन्मों की भोग रहे, था ना आज की मुरली में, आप कल्पना करो उसकी। पर पवित्र बने बिना आत्मा परम धाम तो नहीं जाएगी। पर हम मोस्ट लकी, इतने करोड़ों मनुष्यों के बीच में मोस्ट लकी है कि भगवान इस धरती पर आया और उसने मुझे कहां कहां से ढूंढ लिया, अपना बनाया। आप भारत का, विश्व का जो नक्शा है, मैप है, वो देखो, नक्शे में आप जिस शहर में रहते हो, जहां आपका घर है और उस घर में आप रहते हो, वो नक्शे में दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान को आप दिख गए, इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। शिव बाबा को आप दिख गए, बाबा ने आपको ढूंढ लिया। आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? हाँ, बाबा ने ढूंढा। हम तो 63 जन्मों से पुकार रहे थे, उसने ढूंढ ढूंढ कर अपने पास बुलाया। तो मोस्ट लकी है बाबा के बच्चे। अब मोस्ट लकी तो बन गए, भाग्य के दरवाजे खोल दिए भगवान ने। अब उसमें हमको उस भाग्य को लूटना, या कहें कि पेन कहते हैं ना, कलम, कलम प्रभु ने पकड़ा दी। अब कहता है लकीर तुम्हारी जितनी बड़ी करनी है करते जाओ, लंबी 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 करो अपने भाग्य की लकीर। मैंने कलम तुमको दे दिया, वो हमारे ऊपर है हम कैसे करते हैं। तो इतने हम बाबा के बच्चे मोस्ट लकीएस्ट हैं। अब हम बाबा के बने, कब बने? जब बाबा ने हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया। पहले तो शूद्र थे, विकारी पतित। बाबा के कहलाए कब हम बच्चे? जब हम ब्राह्मण बने। तीन पिता के बच्चे बने, दो पिता के बच्चे तो दुनिया में सब है। आत्मा का बाप तो शिव बाबा सबका है ही है, लेकिन अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, उनके जो हम बच्चे बने, मुखारवंद से पैदा हुए ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण, वो तब हुए जब बाबा ने हमको ऐसा जन्म दिया। और जन्म देके ही बाबा ने पहला फरमान किया, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। पहली आज्ञा, पहला फरमान, पहली श्रीमत, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। और सचमुच बाबा के बच्चों ने घर गृहस्थ में रहते हुए बड़ी सरलता से, सहजता से अपने जीवन के अंदर जो पहला नियम बाबा ने बताया कि साथ में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान जीवन बनाओ, बना लिया बच्चों ने। आज कोई महापुरुष, जगत गुरु, महात्मा, किसी की ताकत नहीं है कि वो गृहस्थ में रहे हुए पति पत्नी को पवित्र बना के दिखाए। केवल ये कमाल बाबा की है, बाबा की शक्ति है जिन्होंने ये असंभव बात को संभव किया। राइट? सिर्फ बाबा के लिए ताली बजाओ। ये भी एक एक्सरसाइज होती है ना बीच में। ओके। तो ये तो बाबा को थैंक्स है। अब हमने पवित्रता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। ये पहली सीढ़ी थी जो बाबा की पहली आज्ञा, और फिर धीरे धीरे बाबा हमें और स्टेप्स में आगे लेके गए। जब हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और वो भी सरलता से। आज कोई भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले युगल को पूछो तो कहेंगे, दीदी पता ही नहीं चला, बड़ी नेचुरल हो गई, बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमने कर लिया। फिर दूसरा स्टेप भी बाबा ने बताया, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बच्चे आगे बढ़ो। तो दूसरे स्टेप में भी, जैसे अभी बच्चे पैदा होते हैं ना, आजकल तो 2-2.5 बरस के बच्चे को प्ले में डाल देते हैं। पहले तो 4-5 बरस तक बच्चा स्कूल नहीं जाता था, अभी तो समय बदल गया। फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, उसके बाद उनको फर्स्ट में जाना होता है। तो ये केजी के स्टेप है छोटे छोटे बच्चों के। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप बाबा ने खान पान का हमको बताया कि बच्चे जैसा अन्न वैसा मन, तो बच्चों को शुद्ध अन्न ही स्वीकार करना है। जैसे मुझे भक्ति मार्ग में भोग लगाते रहे तो शुद्ध भोजन बनाते रहे, अब तुम मेरे समान बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो, तो तुम्हारे पेट में भी शुद्ध अन्न जाना चाहिए। और अन्न का असर मन पर 100% पड़ता है, ये बाबा ने भी बताया है और हरेक का अनुभव भी है। आज आप देखेंगे लोग अज्ञानी भी आते हैं ना, या गुरुवार गुरुवार बाबा को हर सेंटर पे भोग लगता है, अधिकतर कई सेंटरों से हर गुरुवार को 50 से 100 भोग VIPs के पास जाता है, कहां कम भी जाते होंगे, हमारे तो 100 के करीब तो जाते हैं, 100 वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। और भाई बहनों को ड्यूटी दी हुई है, भाई आप 10 ले जाओ, आप 10 ले जाओ, आप 5 लेके जाओ, फिक्स है उनका। तो उनके पेट में बाबा का जो अन्न जाता है, अनुभव ये कहता है कि धीरे धीरे उनके मन पर उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। बाबा के बच्चे भी घर में सब ज्ञान में नहीं होते हैं, पति ज्ञान में नहीं है, तो पत्नी क्या करती है, खूब अच्छी तरह से हाँ बाबा का याद में भोजन बनाएगी, बाबा को भोग लगाएगी और कहेगी बाबा पति को सद्बुद्धि दो, बाबा का बच्चा बन जाए। और सचमुच कईयों के अनुभव है कि धीरे धीरे उनके मन को वो अन्न जो है वो परिवर्तन करता है। इसलिए बाबा के घर की टोली बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, मशहूर है कि भाई टोली तो जरूर मिलनी चाहिए। तो अन्न का भी बाबा ने महत्व बताया और हम बच्चों ने इजीली अन्न भी शुद्ध स्वीकार करना शुरू किया। तो ये तो छोटी छोटी सीढ़ियां हम चढ़ते गए। पवित्रता के लिए तो बाबा हमेशा बताते हैं कि किसी को भी देख कर अगर हमारी दृष्टि वृत्ति कृति में भी कोई ऐसा संकल्प आ गया तो बच्चे ये पाप है, भूल नहीं केवल लेकिन पाप है। और हम अटेंशन देते रहते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो पहले पढ़ाई सहज होती है लेकिन बच्चा जितना जितना आगे बढ़ता जाता है ना, पढ़ाई थोड़ी टफ होती जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती जाती है, फिर उसके ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। आप सभी अनुभवी हो उसके, तो हम भी आगे बढ़ते गए। जब बाबा भी साकार से आकार में अव्यक्त हुए, साकार मुरली में बाबा ये महावाक्य उच्चारण करते कि बच्चे मन में संकल्प आएगा, विकल्प आएगा, गंदे विचार आएंगे, पर कर्म में नहीं लाना। अगर कर्म में लाया तो विकर्म बनेगा, लेकिन ये पढ़ाई है साकार वाली, बहुत बरस पहले की। उसके बाद अव्यक्त जब हुए बाबा, तो बाबा ने आगे बढ़ाते हुए विधि विधान में परिवर्तन किया कि बच्चे अब तुम्हारा मनसा का भी हिसाब बनता है। मनसा में भी अगर तुमको संकल्प आया, विकल्प आया, उसकी भी सजा मिलेगी, वो भी पाप है। यहां तक बाबा हमको आगे ले जाते हैं। अब तो बाबा यहां तक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोच लिया, नेगेटिव सोच लिया, व्यर्थ सोच लिया, वो भी तुम्हारा पाप के खाते में जमा होता है। अब तो यहां तक बाबा ने कह दिया। जैसे हम लोग अज्ञानियों को कहते हैं कि जो मांस मटन खाते हैं ना, तो हम उनको बताते हैं, एक अपना प्रदर्शनी का फोटो भी है कि बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला और खाने वाला चारों पाप के भागी। ऐसे नहीं, मेरा बेटा खाता है, दीदी मैं नहीं खाती हूं, बना के देती हूं, नो परमिशन, याद रखो, इसकी परमिशन नहीं है। चारों पाप के भागी हैं। ऐसे ही अभी बाबा कहते हैं, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ व्यवहार करना, व्यर्थ सुनना, सारे पाप के भागी हैं। अब हमें ये कड़वा शब्द याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा हमारी मनसा को पवित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो मन है ना। कोई भी कर्म करने के पहले शुरुआत कहां से होती है, बोलो, मन से होती है। मेरे मन में ये विचार आया, विचार स्थिति बना देता है। जैसे विचार आप करोगे ना, वैसी स्थिति ऑटोमेटिक बनती है, चेहरे पे आ ही जाता है। कॉमन भी आप देखेंगे ना, अभी समझो मैं बैठी हूं एकांत में, और मैं 6 महीना पहले की एक बात याद करती हूं, मेरा बहुत मान हुआ, मेरे को बहुत ऊंची स्टेज दिया, महिमा किया, मुझे अवार्ड मिला, दृश्य याद करते करते मैं खुश हो जाएगी, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, कितना अच्छा। उस समय कोई व्यक्ति आ गया, उनको भी हम वर्णन कर लेंगे, देखो मैं ना वो याद कर रही थी, बहुत अच्छा दृश्य था। हमारी स्थिति भी वैसी बनती है। और अगर मैंने 6 महीना, 5 बरस वाले पहली भी बात याद किया, अब बात गई, कभी की रात गई, बात गई, मेरा अपमान हुआ, मेरे को गाली दिया, मेरी बेइज्जती किया, मेरे से झगड़ा किया, गुस्सा किया कोई ने, मैं वो अगर बात अभी आज याद करती हूं, मेरे चेहरे पर चेंजेस आ जाती है, अच्छा नहीं लगेगा। उस व्यक्ति पर 5 बरस के बाद भी फिर से जैसे गुस्सा आएगा। और उस समय अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ पूछने आया, बात करने आया, उसको भी मैं बराबर जवाब नहीं देगी, मेरी मानसिक स्थिति पे उसका असर आ जाता है। अब बात तो कब की हो गई। तो मन जो है ना, वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। मन, तब बाबा कहते मनोबल पावरफुल बनाओ। मन में जो विचार आते हैं ना, वैसी हमारी जीवन बन जाती है। इसलिए बाबा कहते शुभ भावना, शुभ कामना, एक छोटी सी स्टोरी याद आई जो मेरा परिचय में आपने सुना होगा, तत्व बोध में 650-700 स्टोरीज मैंने डाली है, दो दो मिनट की, जिसमें बोध मिलता है। तो एक कुम्भार था, मिट्टी से कुछ बना रहा था। उसकी पत्नी आई, बोला क्या बना रहे हो? बोला चिल्लम बना रहा हूं। चिल्लम मालूम है ना, वो आग डालते उसमें, भाइयों को तो अच्छी तरह मालूम होगा। तो बोला अरे अभी गर्मी के मौसम है, आप सुराही बनाओ, सुराही नहीं, पानी ठंडा रहता है, सुराही बनाओ, बहुत चलेगी, धंधा होगा, गर्मी है अभी। पति को लगा हाँ पत्नी बात तो ठीक कहती है, सही बात है, सुराही बनानी चाहिए। उस मिट्टी को यूं यूं कर दिया, फिर वो सुराही बनाने लगा। जैसे ही बनाना था, मिट्टी ने उसको पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम तो ये चिलम बना रहा था, ये भी वापस क्या हुआ? बोला विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा तुम्हारा विचार बदल गया, मेरी तो जीवन बदल गई। तुम्हारा विचार बदल गया, मेरी जीवन बदल गई। चिलम बनाते लोग आग डालते और बाहर भी वही व्यवहार रहता, और सुराही अंदर भी ठंडी, पीने वाले भी शीतल। तो कितनी अच्छी बात, तो हमको क्या बनना है? सुराही, खुद भी शीतल रहें, दूसरों को भी शीतलता दे। तो हमारे मन के ऊपर बहुत आधार है। ये जो बाबा इतना मुरलियों में कहते, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। अज्ञानियों की तो फरियाद होती है, मन घोड़ा है, चंचल है, भागता है, लेकिन अब तक बच्चों की भी ये फरियाद है। क्या फरियाद है? बाबा व्यर्थ बहुत आ जाता है। और कैसा आता है? उड़ उड़ करके आता है, सेकंड में, मैंने उसको कुछ तकलीफ ही नहीं करनी पड़ती हमको, खाली किसी ने थोड़ा मुझे कुछ बोल दिया, और एक व्यर्थ संकल्प 1000 बच्चे पैदा करते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, वो काकरोच होता है, काकरोच 100-100 बच्चे पैदा करता है, दीमक होती है ना दीवार, लकड़ी में दीमक 1000 बच्चे पैदा करती है। ऐसे व्यर्थ है ना, 1000 बच्चे पैदा, पूरी दुनिया बन जाती है, क्यों क्या कैसे किस लिए ये वो, इतनी दुनिया बन जाती है, बात मत पूछ, चक्कर चलता ही रहता है। वो बंद होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए बाबा को कहना पड़ता है समर्थ का स्टॉक जमा करो, पॉजिटिव का स्टॉक जमा करो, मन को शुद्ध बनाने, ताकि पॉजिटिव 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 ही रहे। नेगेटिव सामने तो आएगा, हम ये तो कह ही नहीं सकते नहीं आएगा, पल पल आएगा, पल पल हर जगह पर जाओ आएगा, लेकिन मुझे ये कला सीखनी पड़ेगी नेगेटिव में से पॉजिटिव लेना। एक कला सीखो, जैसे देखो ट्रक के पीछे, एक ट्रक के पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दूसरी ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से, अर्थ तो एक ही है पर शब्द देखो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला बोल के हम भी ऐसे हो जाते हैं, और देखो मगर प्यार से बोल के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ये फर्क पड़ता है। वो कहते ना कि एक व्यक्ति था, वो नदी किनारे वहां खड़ा था तो एक बिच्छू था, वो डूब रहा था, उसको दया आ गई, झाड़ का पत्ता लिया और बिच्छू को बचाने लगा। बिच्छू पत्ते पे आया पर उसका काम था ढंकना, तो उसने उसको ढंका तो वापस ऐसा हाथ हो गया, फिर बिच्छू गिर गया, फिर बचाने लगा, फिर वो आया, फिर उसको ढंका, ऐसा 5-6 बार हो गया। दूर से एक व्यक्ति देख रहा था, उसने उसको कहा भाई छोड़ो ना उसको, क्यों आप घड़ी घड़ी वो आपको ढंक रहा है, आप बचाते रहते हो, उसको छोड़ दो, डूबने दो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो भैया उसका काम क्या है, डंक मारना, वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता, मेरा कर्तव्य है रक्षा करना, मैं क्यों अपना कर्तव्य छोड़ू। हम लोग क्या करते हैं, गुण को छोड़ देते हैं, अवगुणी पक्का रहता है, वो नहीं छोड़ता अवगुण, अपंडिले हो जाते हैं। फेल कौन हुआ, फेल कौन हुआ, हम फेल हो गए ना। जिस व्यक्ति का नेचर ही है गुस्सा करना, क्रोध करना, रफ बोलना, वो बोल ही रहा है, 10 बार उसने बोल दिया, 10 बार मैंने सुन लिया, पर 11वीं बार मेरे मुंह से निकल गया, मैं कितना सहन करूं। उसने 11वीं बार भी बोला तो वो तो पास है ना, क्योंकि उसकी नेचर है, उसकी नेचर है, उसका स्वभाव है, उसने अपना नेचर नहीं छोड़ा, उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। मैंने छोड़ दिया, मैं गुण को छोड़कर अवगुण को पकड़ लिया। ये बाबा कहते बच्चे यहां प्रैक्टिस कर, कितना भी नेगेटिव आपके सामने आवे ना, उसमें से पॉजिटिव उठाने का प्रयोग करते रहो, करते रहो। कैसे, जैसे बाबा हमारे ऊपर कर रहे, मास्टर रहे, दिल बनो, बाबा कहते। आज अगर भगवान मुझे प्यार कर रहा है, कब कर सकता है, अगर बाबा जब मैं आई ज्ञान में और बाबा मेरे अवगुणों को देखे, मेरे 63 जन्मों को देखे, इतने मैंने पाप किए, बाबा को कितनी गालियां दी होगी मैंने, अगर बाबा वो मुझे देखे, मेरा जन्म पत्रियां, तो बाबा मुझे प्यार करेगा, नहीं करेगा। लेकिन बाबा ने नहीं देखा, सब एक तरफ रखा बाबा ने, और बाबा प्यार का सागर मुझे प्यार किया, शुभ भावना, शुभ कामना। तो ये बाबा कहते बच्चे तुम प्रैक्टिस करो, यही तो बाप समान बनना है, इसी में ही बाप समान बनना है। कैसी भी आत्मा तुम्हारे सामने आए, चाहे वो तुम्हारी प्रिय है, अप्रिय है, आपसे कैसा भी व्यवहार करे, हमारा व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। हम पॉजिटिव रहें, मास्टर रहम दिल रहें, मास्टर कल्याणकारी रहें, और उस आत्मा को भी हम योगदान दें। और कुछ नहीं कर सकते हैं, मन आपके बोल से भी वो व्यक्ति नहीं समझता है, सबसे अच्छी सेवा है मनसा सेवा। लेकिन मनसा सेवा सफल कब होगी, जब हमारा मन शुद्ध पवित्र समर्थ विचारों वाला होगा, तो फिर आपकी मनसा बहुत फास्ट पहुंचेगी, यहां आपने संकल्प किया वहां सफलता। आज तक वो नहीं मिल पा रही है, टाइम लगता है, मिलती है 100% मिलती है, पर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अब तक हमारी मनसा शुद्ध पवित्र नहीं बनी है। तो उससे हमें पवित्र बनाने के लिए हमको समर्थ स्टॉक जमा करना है। अब समर्थ ज्ञान का जो स्टॉक है वो कैसे जमा होगा, वो होता है बाबा की मुरलियों से, सेंटर के संग से। जितना आप मुरलियों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसमें डूबे रहोगे, एक एक मुरली दो दो तीन तीन चार चार बार आप पढ़ो, हर समय नई बात मिलेगी। वो कहते एक बार जानकी दादी ने साकार बाबा को पूछा, क्योंकि जानकी दादी डेढ़ बरस पीछे आई दूसरी दादियों की भेंट में, तो बाबा को बोला कि मैं उनके साथ साथ उनके लेवल में चलना चाहती हूं, मैं डेढ़ बरस पीछे आई इसके लिए गैलप करने का, क्या करूं। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें ना एक मुरली छह छह बार पढ़ो। दादी को बोला हर मुरली बाबा की छह बार पढ़ो। दादी ने कहा मैं ना बारह बार पढ़ती थी ताकि मैं जल्दी जल्दी है ना दादियों के पास उनके लेवल में जा सकूं। और प्रकाशमणि दादी लास्ट तक भी कम से कम तीन बार मुरली पढ़ते थे, वो दादी के मुख से हमने सुना हुआ है। वो बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल देखो समय क्या है, कोरोना के बाद तो और थोड़े ढीले हो गए, पेशाब माइंड में देख लेंगे, इसमें क्या मोबाइल में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, पेन ड्राइव में भी भरा हुआ है, सेंटर पे जाने की क्या जरूरत है। नहीं, सेंटर की हाजिरी बाबा के वतन में पड़ती है, ये याद रखो। सेंटर का वातावरण, सेंटर की धरती ऊर्जा देती है, शरीर में भी ऊर्जा आती है, आत्मा में भी ऊर्जा आती है। इसीलिए ये संकल्प रखो रेगुलर मुरली सेंटर पे जाके सुननी है। फिर सेकंड ऑप्शन है आप घर में पढ़ो, सुनो, लिखो, जो करना है करो। नहीं तो आजकल सबको बादशाही मिल गई है, साइंस के प्रगति हो गई साधन, भाई क्लास में क्यों नहीं आती थी, मुरली पढ़ लिया हमने, देख लिया टीवी में, देख लिया, पढ़ भी लिया, तो फिर सेंटर बंद कर दे रहे, घर में पढ़ ले वे सभी। बाबा ने क्यों खोल के रखे बाबा के घर। तो मुरलियों से आपको स्टॉक मिलेगा पॉजिटिव का, समर्थ बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो वो एक लक्ष्य बना के रखो, मन को शुद्ध बनाए। अब मन को शुद्ध बनाया तो वाचा तो अपने आप बन जाती है ना, क्योंकि जो मन में है वही मुख से निकलता है, और मुख से अगर हमारे पवित्र वचन, ज्ञान रत्न, हंस हैं हम हमारे ऐसे वचन निकलते हैं तो कर्म और व्यवहार पर तो उसका असर होता ही है। और अगर अब हम नहीं करेंगे ये परिवर्तन तो कब करेंगे, क्योंकि समय हमारे हाथ में नहीं। अभी आप समझ लो शरीर में नाखून के बराबर का समय अभी बचा है, सब खत्म हो गया, पूरा हो गया, आंखों के सामने दिख रहा है अभी। तो इतने समय में भी अगर हमने फास्ट परिवर्तन नहीं किया तो हाथ से चला जाएगा। अच्छा, इसमें भी हमारे शरीर का भरोसा है, है? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी भी घड़ी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो अंतिम श्वास मेरा बाबा की याद में निकले, जो मम्मा का था, हर घड़ी को अंतिम श्वास समझो, तो वो कब होगा। मनसा पवित्र रहने से बाबा की याद का चार्ट जो है ना वो बढ़ता जाता है, क्योंकि मनसा में पॉजिटिव है और पॉजिटिव का कनेक्शन बाबा के साथ है, नेगेटिव का कनेक्शन रावण के साथ है, ये समझ के रखो। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे एवर रेडी रहो, हो सभी एवर रेडी हो, अभी बाबा बुलावे तो जाने को तैयार हो या नहीं? अभी तो हिसार में इधर उधर जहां से आए पहले जाना पड़ेगा, घर छोड़ के आए, बच्चे छोड़ के आए, समझो आज कोई को यमदूत आता है मैं तुमको लेने आया हूं, आप यस करोगे या रुको रुको थोड़ा रुको रुको? हाँ बोलो, रेडी हो? कुछ भी याद नहीं रहेगा, कहां बुद्धि नहीं जाएगी। इसकी एक छोटी सी स्टोरी मजे की सुनाती हूं। एक व्यक्ति को सपने में यमदूत आया, बोला अभी कुछ समय के बाद देखो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो भाई बहुत धनवान था, पैसे वाला था, बोला देखो तुम है ना अचानक मत आना मेरे पास, मेरे को मैसेज करना, मुझे लेटर भेजना, बाद में आना मेरे पास, आज की भाषा में कहें व्हाट्सएप करना, ईमेल करना, बाद में आना। तो बोला ठीक है मैं तुमको मैसेज करूंगा, ओके। कुछ बरस बीते गए, उसकी उम्र भी थोड़ी बड़ी हो गई, अंतिम समय आ गया। जैसे ही आया वापस आ गया यमदूत, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। अरे तुमको तो बोला था ना अचानक मत आना, लेटर भेजना, ऐसे किसे आ गया तुम, लेटर तो भेजा ही नहीं। बोला नहीं क्यों भेजा था? बोला कहां भेजा? बोला भाई जी एक नहीं चार चार लेटर भेजा तेरे को। बोला चार लेटर? बोला हाँ, कौन सा लेटर? बोला देखो सबसे पहले तुम्हारे बाल सफेद हुए, ये मेरा पहला मैसेज था, सबसे पहले तुम्हारे बाल सफेद हुए, तुम्हारा ये मेरा पहला मैसेज था, तुमने क्या क्या मजे से कलर कर दिया और हीरो बन के घूम रहा। अच्छा फिर आगे जाके दूसरा मैसेज आया, हमारी तरह आंख नजर कम हो गई, नजर कम हो गई, ये दूसरा मैसेज था, मजे से तुमने मस्त गोल्ड चश्मे लगा दिए और सुपर डुपर हीरो बन के घूम रहा। फिर मेरा तीसरा मैसेज, तुम्हारे दांत टूट गए, ये तीसरा मैसेज था, मजे से झूठे दांत लगाए, हलवा पूरी सब खाने लगा। फिर मेरा चौथा मैसेज आया, तुम्हारा सुनना भी कम हो गया, तो भी तुम मशीन लगा दिया, तुझे कोई असर ही नहीं हुआ, कोई लेटर तुमको मैसेज समझ भी नहीं आया, मैं क्या करूं, मैंने तो तुमको चार चार बार भेजा। अब बात तो राइट है ना, अब पहले के जमाने में क्या था, कायदे की दुनिया थी, मालूम था मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे जन्मेंगे, 60 बरस होगा, रिटायर्ड होऊंगा, फिर बच्चों को सब चाबी दे दूंगा, फिर भगवान का नाम लूंगा, पहले तो यही सिस्टम था ना, किसको मालूम नहीं था हम जल्दी मरेंगे। लेकिन अभी तो जन्म के बाद कभी भी मृत्यु है, 2-8-10 बरस के बच्चों को बाल सफेद हो रहे, 1 बरस के बच्चे को चश्मा आ रहा है, छोटे बच्चों का दांत टूट रहा है, कान में सुनाई नहीं देता, सारे मैसेज जन्म के साथ मैसेज भी मिल गए सब, कि तुम्हारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्योंकि अकाली मृत्यु है। और वो समय था हमारा सतयुग का, बाबा कहते बच्ची साक्षात्कार होगा कि अभी मैं जाके बच्चा बनूंगा, खुशी होती है मरने की भी, आजकल खुशी नहीं होती, वो खुशी होती है, बच्चा जन्मता है तो भी खुशी होती है, ऐसी दुनिया बाबा दे रहा है। जो आज से 50 वर्ष पहले भी लोग कहते थे कि नहीं मैं तो बड़ा होके मरूंगा, कायदे से दुनिया थोड़ा तो भी चलती थी, तो हमारी दुनिया तो क्या नहीं होगी, स्वर्ग में क्या नहीं होगा। वो एक गीत भी बहुत अच्छा है, जब हम बाबा का वारिस होगा स्वर्ग हमारा मन भावन होगा, सुना है गीत सभी ने, जिसमें खाने को सुंदर मेव मिठाई, पीने को अमृत होगा, मखमल फूल के रास्तों पे शान से चलना होगा, सुना है सभी ने गीत, बहुत सुंदर गीत है। गीत सुन के गा के खुशी हो जाती है कि बाबा कैसी दुनिया बना रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें जल्दी जल्दी अपने को भी तैयार करना है, क्योंकि सृष्टि का आद मध्य अंत अंत है हम सब जानते हैं, लेकिन अभी संगम का आद मध्य बीत चुका। अच्छा, अंत भी बहुत टाइम से चालू हो चुका है, अभी अंत का भी अंत है, ये लिख के रखो। संगम का अंत भी चालू हो चुका। आपको देखो मुरली में याद होगा, बाबा ने बहुत टाइम पहले बोला बहुत काल का अभ्यास चाहिए हर बात में, राइट। फिर कितने वर्षों के बाद बाबा ने कहा बहुत काल भी, बाबा ने कब से बोल दिया है, तो बहुत काल भी कब तक चलेगा, तो अभी उसका भी अंत हो रहा है। तो अब अगर हम नहीं सुधरे, अब अगर हम पवित्र कंप्लीट मनसा वाचा कर्मणा से नहीं बने तो हम कब बनेंगे। हमें भी बनना है, हमें पांच तत्वों को भी पवित्र बनाना है, वो भी हमारी ड्यूटी है कि तत्व जो है पवित्र बने, वो भी मेरे योग से बनेंगे। इस प्रकृति को मुझे शुद्ध पवित्र बनाना है ताकि प्रकृति मेरा दासी बने। तो इतनी बड़ी जवाबदारी है, तो आप पहले देखो कि मेरे अंदर मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की परसेंटेज कहां तक आई है। 100 तक तो पहुंचे नहीं, पर समय ये कह रहा है 70-75 तक होना चाहिए। क्या वहां तक हम बने? और उसके लिए बीज है मेन मनसा, मनसा वाचा कर्मणा, बोलने में भी आता है पहले मनसा। और ये जो बाबा बार बार कहते मनसा सेवा, क्योंकि आगे जाके तो वही काम आएगी। अभी देखो 3 दिन पांडव भवन में, आपको बताऊं बहुत अच्छा किस्सा, हमारी भट्टी चल रही थी, हमारा डेट था 14 जून से 18 जून घाटकोपर जोन का, हम लोग इधर थे, इतना चक्रवार घुमा, जाने वालों की हैरान गति हो गई। कोई फोन तो अभी भी नहीं लगते, यहाँ पर नहीं लगते ना, शायद नेटवर्क सब जगह पकड़ता नहीं है, कोई नीचे शांतिवन में किसको फोन नहीं, कुछ नहीं, बसेस जाने को तैयार नहीं, क्योंकि 100 कम से कम झाड़ नीचे गिर गए। अब अरावली ट्रेन है, 5 बजे की ट्रेन है, और 3:30 बजे तक पे पैसेंजर इधर बैठे, ऐसी हालत हो गई। इतनी हालत खराब थी, कईयों को अभी समझो एक बहुत बड़ा पेड़ नीचे गिरा था, अब क्या करे। तो यहां वाले जो है नीचे आने वाले वहां रुके, ऊपर जाने वाले यहां रुके, टैक्सीज चेंज कर दिया, आप इसमें आओ हम उसमें जाते, वो नीचे का नीचे जाए, वो ऊपर का ऊपर है, जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़े। तो भरोसा था ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे टाइम टेलीपथी काम आएगी, अब ये तो कॉमन होने वाला है। तो टेलीपथी कौन कर सकेगा, उसके लिए मनसा शुद्ध पवित्र चाहिए, क्लीन नीट क्लियर, बाबा के साथ बुद्धियों क्लियर। अच्छा, मेरी मनसा तो क्लियर हुई, चलो ठीक है, मेरी मनसा शुद्ध है, मैं इनको मैसेज कर रही हूं बहन को, लेकिन उसकी टचिंग पावर कैचिंग पावर भी कब होगी, जब उनकी मनसा पवित्र क्लियर और क्लीन होगी, नहीं तो वो पकड़ नहीं सकेगी मेरा संकल्प, मैंने तो कर लिया पर उसको भी पकड़ना आना चाहिए, तो दोनों बाजू की लाइन क्लियर चाहिए। तो उसका आधार तो बाबा की याद ही है, जितना आप अभी बट्टी कर रहे हैं, सेंटरों पे तपस्या कर रहे हैं, घर में भी आप तपस्या करते हो, बट्टी करते हो, योग करते हो, आधार तो बाबा की याद है। लेकिन बाबा की याद के साथ जो बाबा हमको मुरलियों में ये ज्ञान का मनन चिंतन और डिटेल सब गहराइयां बता रहे, उसके ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। अब समय नाजुक है, गंभीरता से हमको पुरुषार्थ करना है। अभी थोड़े अलबेले रहें, आलस्य में आ जाएं, हो जाएगा, ठीक है। आज तो हम मरने वाले नहीं, फाइनल, चलो कल देखा जाएगा। नहीं, मौत कभी भी आएगा, किस भी घड़ी आएगा। तो ऐसा गंभीरता से अपने को, जैसे बहुत बुजुर्ग कहे ना, पुरुषार्थ में ऐसे समझ करके हमको पुरुषार्थ में उड़ती कला में जाना पड़ेगा। तब हम समय के पहले मंजिल पर पहुंचेंगे, वतन में पहुंचेंगे और बाबा के साथ परम धाम का गेट खोल सकेंगे। क्योंकि हम सजनियां हैं, साजन के साथ रहना है। अगर पीछे आओगे तो बाराती बन जाओगे, तो क्या करना है? हाँ, देखो अभी हमारा नीचे हो रहा है, क्या बोलते हैं, सम्मान हो रहा है, क्या बोलते, हाँ, समर्पणता का फंक्शन, सब चुनिया डाल डाल करके हमारी सब टीचर्स, मैंने इधर भी आई, वो शांति स्तंभ में मैंने देखा फेरा पहन रही थी, एक दो तीन, मेरे सामने तीन चार हो गया। अच्छा लगा मुझे, चलो अच्छा है, साजन के साथ फेरा पहन रहे हो। तो अभी ये जो बाबा हमको सजनी बनाया, तो हमको तो साजन के साथ जाना है। दो दिन पहले ही बाबा ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, तुम हसीना हो, मैं तुझे गोरी बनाने आया हूं, गोरी। सब सजनियां काली है, काली काली को मैं गोरा बनाता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, इसलिए तो सारे सेंटर ब्यूटी पार्लर है, रोज बाबा गोरा। ब्यूटी पार्लर वाले क्या करते, पेसल करते, पेसल सुना है, पेसल करते। मैंने पूछा था किसी को, पेसल कितना दिन होता है, चलता है? बोला लग, पेसल करने को तो एक दो घंटा ही जाता होगा, कोई कोई का ज्यादा भी जाता होगा, चलता खाली 15 दिन 20 दिन है, वापस करना पड़ता है। अब बाबा हमको रोज पेसल कर करके परमानेंट गोरा कर रहे हैं। बाबा कहता है सतयुग में ना क्रीम ना पाउडर, अभी सब थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल खलीमिटीज भी नहीं है और नेचुरल ब्यूटी है हमारे पास। तो इसीलिए अभी तो सब सेंटर बाबा के ब्यूटी पार्लर है और उसमें रोज आने का, तभी तो होगा ना पेशल हमारा, नहीं तो कैसे होगा। तो इसीलिए सेंटर पे भी जरूर जाएं, घर में भी अच्छी तरह अभ्यास करें। और मधुबन में आए हैं तो यहाँ तो डबल भट्टी है, जितना तपो भूमि पांडव भवन, तो हाँ, ब्रह्मा बाबा की मम्मा की कर्म भूमि। हम जब इतने छोटे थे, मैं 8 बरस की थी और तभी मम्मा भी थे और बाबा भी थे, तो बाबा के साथ हमने खेला भी है। मैं जब पहली बार आई तो सिर्फ इधर बाबा का ही रूम था और वहां जहाँ ट्रेनिंग सेशन है ना, वहां वो था, वो बगीचे में क्या होता है बच्चों का, क्या बोलते हैं उसको, लसर कुंडी होती है ना, वो थी, सब झूला था, उधर हम लोग खेलते थे, कुछ भी नहीं था, सब मिट्टी विट्टी सब यही सब था। आज देखो बाबा ने क्या बना दिया। बाबा का अगर, बाबा कहते आबू ही तुम्हारा होने वाला है। एक मुरली में बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण का महल है ना, पूरे आबू जितना होगा, आपको याद हो तो, एक मुरली में कहा। मैं सोच रही थी वो अंत लास्ट रूम में कब पहुंचेंगे, सारा वो चेकिंग कब करेंगे, लेकिन वहां पुष्पक विमान है ना, अंदर भी होगा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो पूरे महल में घूमते रहेंगे। कितना अच्छा बाबा हमको दे रहा है। बाबा ने उस मुरली में कहा, 5 एक महाराजा के पास 5 पुष्पक विमान होंगे। कैसे? हम दो, हमारे दो होंगे, एक लड़का एक लड़की, ओके, एक बच्चा एक बच्ची। तो एक पुष्पक विमान ऐसे होगा जिसमें फैमिली जा सकती है, और चारों का सेपरेट एक एक अलग होगा। होगा ना, आप सभी का भी होगा कि नहीं, या आपको मेरे पुष्पक विमान में आना पड़ेगा? हर एक अपना अपना रखना। हाँ, ये जरूर है, मैं आज आपको मेरे महल में आने का निमंत्रण दे देती हूँ खुले दिल से। हाँ, हर एक के बड़े बड़े सुंदर महल होंगे, ऐसी बाबत दुनिया में लेके जा रहा है। तो जल्दी जल्दी हम अपने को ऐसा योग्य बनाए। ठीक है, समय हो गया। ओम शांति।